ओम शांति। आज के इस पट्टी में हम अगला आधा घंटा एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। विषय का नाम है ब्रह्मचर्य का बल। पवित्रता पर हम हमेशा चर्चा करते आए। पवित्रता की बहुत सारी बातें हमें पता है, परंतु ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है कि बिना ब्रह्मचर्य के संपूर्ण पवित्रता संभव नहीं। क्या हम करें जिससे एक ब्रह्मा कुमारी जीवन संपूर्ण ब्रह्मचारिणी जीवन हो और संपूर्ण ब्रह्माचारी जीवन हो। इस संपूर्ण पवित्रता की इमारत का जो आधार स्तंभ है वो ब्रह्मचर्य है। क्या हम करें कि जिससे ब्रह्मचर्य निरंतर रहे, अखंड रहे। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो बीच में आ जाती है और ब्रह्मचर्य को सूक्ष्म रूप से भंग करती है। क्या हम करें कि जिससे ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो चिरकाल तक अखंडित टिके। इस ब्रह्मचर्य की महिमा द्वापर से ऋषि मुनियों ने की है। संसार में बहुत से धर्म स्थापक आए, धर्मों की स्थापना हुई और सभी धर्म की स्थापना के समय बहुत ज्यादा पवित्रता थी, परंतु धीरे धीरे हर धर्म का पतन हुआ और हर धर्म के पतन का कारण एक ही था और वो था अब्रह्मचर्य, वो था विकार। द्वापर से अब तक संसार में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हुई है जिन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया और वो सभी स्त्रियां बहुत महान रही। शास्त्रों में मैत्रेयी, गार्गी का वर्णन है, सावित्री, ऐसी बहुत सी स्त्रियों का वर्णन है। वो सभी स्त्रियां या तो ब्रह्मज्ञानी थी या फिर परमात्मा प्रेम में मगन थी, ईश्वरीय प्रेम में खोई हुई थी। वो मीरा हो, चाहे महाराष्ट्र में बहिनाबाई, मुक्ताबाई, सखूबाई, ऐसी बहुत सारी, या तो फिर दक्षिण में अक्का महादेवी, या तो फिर वेस्ट बंगाल में माँ शारदा, आनंदमयी माँ, गिरिबाला, ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं कि जिनमें आध्यात्मिक शक्तियां थी और वो सभी स्त्रियां बहुत पवित्र और जिस जिस युग में उन्होंने जन्म लिया उस युग में क्रांति लाई अपने तरीके से। तो इस संपूर्ण पवित्रता का आधार ब्रह्मचर्य। वो सभी स्त्रियां चाहे वो विवाहित थी या अविवाहित, परंतु देह से और देह की दुनिया से और देह के आकर्षण से और देह के भोग से उनकी बुद्धि ऊपर उठ गई थी। ऐसी एक संत कवि हुई थी राबिया, सूफी संत राबिया, जिसके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आई, परंतु परमात्मा के प्रति उसका जो प्रेम था, अडिग था, बचपन से लेकर यातना ही यातनाएं, माँ बाप चले गए, किसी ने उसको बेच दिया, गुलाम बनकर रही, पर एक दिन उस मालिक ने देखा कि ये स्त्री क्या कर रही है, इतना भाव मगन होकर प्रभु का गुणगान कर रही है, तब उसे वो छोड़ता है, वहां से कहीं और जाती है, वहां से कहीं और जाती है, एक के बाद एक जीवन में परिस्थितियां, परंतु उस खुदा के लिए इतना प्यार हृदय में, ऐसी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में हैं कि कुछ कुछ संत जो उसके समकालीन थे, जैसे एक संत था हसन, उसकी भी बुद्धि एक बार विचलित हो गई राबिया को देखकर, पर राबिया का अपना योग बल कहो या पवित्रता की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसको भी गिरने नहीं दिया, नहीं तो वो भी गिर रहा था, जो हसन अपने आप में बहुत बड़ा संत था। तो इस तरह संसार में बहुत सी स्त्रियां हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जब विवाह हुआ शारदा माँ के साथ, तो सबसे पहला प्रश्न रामकृष्ण ने शारदा माँ से पूछा था, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस अपनी साधना में रहते थे, भाव विभोर मगन, उनको संसार का कुछ खबर नहीं, संसार की, संसार में क्या हो रहा है। तो शारदा माँ ने क्या उत्तर दिया था, मैं तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी सहयोगी बनने आई हूं। और उसी रात्रि में रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को मां रूप में स्वीकार किया और उसकी षोडशी पूजा की देवी समझकर, और वो भी कितनी महान उस स्थिति में संपूर्ण स्थित रही और अंत तक स्थित रही। रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ने के बाद भी वो जो सारे सन्यासी थे उनके शिष्य, उनकी संभाल उसने मां बनकर की, इतनी छोटी आयु में मां बन गई, एक एक सन्यासी किस किस के मन में विकार उत्पन्न होते थे और किस किस के मन में संसार में वापस जाने के संकल्प आते थे, उन सब की भी उसने पालना की, उन सबको भी उसने रोका, एक मां बनकर सबकी पालना की, किसकी, सन्यासियों की, जो जवान है उनकी, जबकि उसकी खुद की उम्र बहुत अधिक नहीं थी। उन्हें होली मदर कहा जाता है। ऐसे ही अभी जो एक महिला जीवंत है साउथ में, माता अमृतानंदमयी, ये सभी वह स्त्रियां हैं जिनमें प्यूरिटी का जबरदस्त बल था, आया है। तो प्यूरिटी की चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे, आज ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मचर्य की आठ बातें हैं। इन आठ बातों में से कोई भी एक बात का खंडन होता है किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान में, तीन चीजें हैं, किसी भी समय एनी टाइम, किसी भी परिस्थिति में सर्कमस्टांस, और किसी भी स्थान प्लेस। इन तीनों बातें, ये आठ बातों में से एक भी बात यदि हो जाती है किसी भी स्थान में, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, तो उसे ब्रह्मचर्य का खंडन माना जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। इन आठों में से कोई भी बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, संस्कृत का शब्द है दर्शनम, देखना, कामुक दृष्टि से देखना, दैहिक दृष्टि से देखना। शरीर सांप है, सांप में विष होता है, चाहे स्त्री पुरुष को देखे या पुरुष स्त्री को देखे, परंतु देखने में यदि देह दिखाई दे, ये दिखाई दे, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये पतला है, ये मोटा है, ये हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है, ये अगली है, देह देखना, देह के सौंदर्य को देखना और दैहिक दृष्टि से देखना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि इस देह को कोई टच करता है, हाथ से नहीं, संकल्प और नजर से, किससे? संकल्प और नजर से, तो यह भी महा 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 पाप है। किस दृष्टि से हम देख रहे हैं? आत्मा चमकती हुई दिखाई दे रही है या देह दिखाई दे रहा है? उसमें भी कल की अव्यक्त वाणी, कुमारियों से मुलाकात, तुम्हारी आंख किसी में ना डूबे और दूसरों की आंख तुम में ना डूबे। यदि किसी और की आंख तुम में डूबती है तो यह तुम्हारी अपनी कमजोरी है, क्योंकि शायद परिस्थिति ऐसी निर्माण की कि उसका आकर्षण मुझ में हुआ। पाउडर और क्रीम, क्या कहा उनको, सांप किसी से प्रभावित ना हो, कुमारी अर्थात किसी के आकर्षण में ना आए। देखना भी काम कांश है, यदि वो देखना कामुक है, विकारी है, दैहिक है। दर्शन केवल देखना, सन्यासियों के लिए और सन्यासिनियों के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है, यदि रास्ते पर चलते चलते कोई दिख जाए तो एक बार देखना स्वाभाविक है, पर मुड़कर फिर से देखना इच्छा, और मुड़कर तीसरी बार देखना वासना। मधुबन में मनमोहन दीदी जब थे, एक भाई है, बहुत अच्छे भाई, एक बहन जा रही थी, किसी सेंटर से आई होगी तब 80s में, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा उस बहन से, बहन जी आप कहां से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे थी, उन्होंने कहा उस भाई को, शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है, वो कहां से? वो कहां से है, नाम क्या है, कितने दिन के लिए आई है, क्यों आई है, इतना दिन से क्यों रुकी है मधुबन में, तुमको क्या करना है? संबंध केवल सेवा का, आए बैठे और जाए, जितना प्यार देना था मां बनकर दे दिया, काम पूरा हुआ। फंस नहीं जाना है किसी में, किसी के रूप में, किसी के सौंदर्य में, और ना वो हम में फंसे, ये भी बोझ है। हमने ही परिस्थितियां निर्माण की होगी, हमने ही अवसर दिया होगा, हमने ही उसकी हिम्मत बढ़ाई होगी, तब तो उसको, उसके मन में ये संकल्प आया। एक संकल्प इधर से भी गया होगा, इधर से कुछ गया तब तो उधर कुछ हलचल हुई। तो अपने देखने को या तो ये देखो, ये सब छोटे बच्चे हैं और मैं इनकी मां हूं, एक मैं जगत माता हूं, निरंतर अपने आप को जगत माता के समान में देखना। सामने कोई भी आने दो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी भी स्टेटस वाला आने दो, हमें रखा किसने है यहां पर? स्वयं भगवान ने चुना है। तो मैं आत्मा जगत माता हूं, मैं आत्मा देवी हूं। कल की अव्यक्त वाणी, कुमारियों से मुलाकात, यदि किसी देवी को कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो शास्त्रों में क्या बताया, क्या बन जाता है वो? भैंस। परंतु यदि किसी को कोई बुरी दृष्टि से देखे और जिसको देखा जा रहा है उसे भी वो अच्छा लगे तो और वो ही चाहे कि वो ऐसा देखे तो देखना, इस देखने में यदि देहभान है, इस देखने में यदि आकर्षण है, इस देखने में यदि मोह है तो वो कामकांश है। दूसरा है स्पर्श, स्पर्शनम अर्थात स्पर्श करना, अर्थात टच करना, अर्थात हाथ लगाना। शुरुआत देखने से है, फिर और आगे स्पर्श टच, हाथ में हाथ मिलाना, और कोई यहां हाथ रख दे तो अच्छा लगना, हम बीमार हैं, और कोई अपना कंधा दे दे और उसके ऊपर हम कंधा रख के थोड़ा आंसू बहा दे, और कोई अदृश्य हाथ दे दे अपना प्यार का, स्थूल हाथ नहीं, अदृश्य प्यार का हाथ, और उसके प्रति विशेष प्रेम, ये सेवाधारी अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई में बहुत गुण है, ये भाई बहुत सेवा करता है, और अपने मोह को और अपनी वासना को सेवा का नाम देना और उस संबंध को सेवा का नाम देकर चलाना, खुद खुद को छल करना है स्वयं के साथ। कौन सा सेवाधारी और कैसा सेवाधारी, किसने बनाया उसको सेवाधारी, वो गुण उसमें किसने दिए, वो स्किल, वो हुनर, वो स्पेशलिटी, वो विशेषता भरी किसने? यदि भगवान ना भरते तो होते होता उसमें वो सब? जिसने दिया उसको भूल गए और उसमें फंस रहे क्योंकि वो सेवा अच्छा करता है। करने दो कितनी भी सेवा, क्या वो शिव बाबा को रिप्लेसमेंट कर सकता है? क्या संसार का कोई पुरुष शिव बाबा को रिप्लेस कर सकता है? वो मीरा थी, एक एक से प्यार, बाकी सभी पुरुष उसके लिए पुरुष थे ही नहीं, एक ही को पुरुष माना उसने बस, एक कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। तो स्पर्श अगर हो जाए तो वो वैसा हो जैसा मां अपने बेटे को स्पर्श करती है, उसमें विकार का अंश भी नहीं, और दूसरे की इतनी हिम्मत ना हो, इतना साहस ना बढ़ जाए कि वो हमें स्पर्श कर ले, अनटच्ड, ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, किसी भी विकारी का, किसी भी ज्ञानी का भी हाथ इस देह को ना लगे। जगदीश भाई कहानी सुनाते हैं, एक स्त्री है, पानी भर रही है, कुआं है, एक युवक आता है, कहता है मुझे प्यास लगी, पानी दो। स्त्री कहती है पानी मैं दूंगी, पर एक शर्त है, अंग से अंग ना लगे। वो कहता है ठीक है, और पानी पीता है और चला जाता है। कुछ समय के बाद उन दोनों के मां बाप दोनों की शादी कर देते हैं और दोनों को बिना बताए दोनों की शादी हो जाती है। शादी में भी एक दूसरे को नहीं देखते, शादी के बाद जब एकदम सामने आते हैं एक दूसरे के, तो वो स्त्री उसको पहचान लेती है, वो पुरुष भी उसको पहचान लेता है। वो स्त्री उससे कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, यही वादा किया था तब तुमने पानी भरते समय। स्पर्श, ना हम किसी की देह को स्पर्श करें, ना कोई हमारी देह को स्पर्श करे। और स्पर्श अर्थात संकल्प और नजर, हाथ तो बहुत दूर है, तीसरा है संस्कृत शब्द है केली, केली अर्थात खेलना, खेल खेलना, साथ साथ खेलना, वो कोई भी गेम हो सकता है। ये तो तब लिखा हुआ था शास्त्रों में, चाहे वो उस समय चेस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। यहां हम गेम्स का अर्थ ले रहे हैं, खेलने का अर्थ ले रहे हैं, मोबाइल पर खेलना, मैसेजेस से खेलना, फोन कॉल्स खेलना, एक मैसेज इधर से, दूसरा मैसेज इधर से, एक मैसेज इधर से, दूसरा मैसेज इधर से, ये भी एक खेल है। इस खेल में भी नहीं जाना है, ये भी खेल है। अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स और टेक्स्ट, कुछ ना कुछ भेजना चालू है इधर से उधर, उधर से उधर। तो तीसरा है केली अर्थात खेल, न खेलना, साथ साथ। उसमें भी एक सेवा का पॉइंट है, इसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, उसके साथ सेवा करना अच्छा नहीं लगता, यह भी मोह का ही अंश है। ये भाई बहुत अच्छी सेवा करता है, मैं इसके साथ सेवा करूंगी, ये भाई सबको बहुत अच्छे से संभालता है, हम इसके साथ मधुबन में जाएंगे पार्टियों को लेकर। इस भाई के पास ज्ञान थोड़ा ज्यादा है, प्रैक्टिकल खेलना। चौथा है प्रशंसा, स्तुति करते रहना, ये बहुत अच्छा है, यही बहुत अच्छा है। मुरलियों में आता है, बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी मुरली चलाती है। बाबा का क्या उत्तर है? ये मुरली आई है, साकार मुरली है। बाप बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत मीठा मुरली चलाती है, बाबा ये बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं, अरे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है, बहन में नहीं फंसो। तो चौथा है प्रशंसा करनी है, सबकी प्रशंसा, और प्रशंसा करनी है छुपके से, एकांत में अपने मन ही मन उसकी स्तुति करते रहना, यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। मन ही मन किसी एक की स्तुति अंदर ही अंदर करते रहना, सब अच्छे हैं, सब एक की सेवा कर रहे हैं, किसी एक ही अच्छा है, ये मोह है, ये बंधन है। तो चौथा है स्तुति प्रशंसा। और यदि कोई बहुत अच्छा काम करे तो क्या करेंगे? स्तुति नहीं करेंगे? ये करेंगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर कितना करना चाहिए? लिमिट में। कोई बहुत ही अच्छा काम करे तो स्तुति करना चाहिए, परंतु वो स्तुति सबके सामने हो, एकांत में ना हो, छुप छुप के ना हो, मोह उसमें समाया हुआ ना हो। जैसे कोई माता ने कोई अच्छा काम किया सबके सामने उसके लिए हम कहते हैं, वैसा उनके लिए भी हो, सब अच्छे, यही अच्छा है, ये बंधन है। तो चौथा है प्रशंसा। पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स। गुह्य भाष्य, एकांत में बैठकर बातें करना, अकेले में बैठकर लंबी लंबी बातें, अंधेरे में बैठकर बातें, कमरे में बैठकर बातें, बंद कमरे में बैठकर बातें, ब्रह्मचर्य का खंडन है। हमारे ओपीडी में जैन साध्वी आती है, बहुत सारी अलग अलग जगह से। वो पेशेंट का जो चेयर होती है बैठने की, उसमें नहीं बैठती है। यदि 40 मिनट्स पहले तक उसमें कोई पुरुष बैठा है तो वो बैठती नहीं है, खड़े रहती है। उनके अपने नियम है, वाइब्रेशंस होते हैं वहां पर, ऐसा उनका कहना है। एकांत में बैठ के बातें करते रहना, इमोशनल टॉक्स, सेंटिमेंटल टॉक्स, इमोशनल एक्सचेंज, आज ये हुआ, मुझे बुरा लगा, रोना आया। रोना है तो वो क्या करेगा? अगर बात करनी ही है तो भगवान से बात करो। जब जब व्यक्ति मनुष्य से बात करता है और मनुष्य से शेयर करता है, भगवान से शेयर करना कम हो जाता है। परिस्थिति है और एक व्यक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति को बैठकर सारा सुना रहे, मेरे जीवन में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, बाबा को कब सुनाएंगे? इधर इतना सुना दिया तो उधर इतना ही सुनाएंगे बाबा को। फिर प्राइवेट टॉक्स, फोन पर बातें। अभी भी थोड़ी देर पहले क्लास हुई थी कुमारों से, हम वही कह रहे थे, 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हां और ना, बस। हां, उसमें सेवा का विस्तार है, सेवा के इंस्ट्रक्शंस है, कोई विशेष बात है, कोई विशेष प्रोग्राम है तो ठीक है। बाकी ज्ञान, योग और धारणा, ये तीनों चीजें नहीं है और बाकी चालू है बातें। वही ये भाष्य, सिक्स्थ संकल्प। संकल्प करना समीप जाने का, प्लानिंग टू मीट सेपरेटली और इन आइसोलेशन। संकल्प करना समीप जाने का उस व्यक्ति के, जहां कोई ना हो और वो मिले। संकल्प, संकल्प तक इच्छा हुई क्योंकि इसके पहले की बहुत सारी स्टेप्स क्रॉस की, देखा, हाथ लगा दिया, प्रशंसा की, साथ साथ समय बिताया, खेलना जिसको कहा। वही बात भाष्य, फोन टॉक्स, उसके बाद आगे संकल्प। सिक्स्थ संकल्प करना कहां मिला जाए। सेवेंथ संस्कृत शब्द है अध्यावसाय। अध्यावसाय, वास्तव में समीप जाना। सिक्स्थ है संकल्प करना, इनसे मिलना है, प्लानिंग करना, इनके समीप जाना है, योजना बनाना, एंड सेवेंथ एग्जैक्ट वास्तव में समीप जाना। लास्ट एट्थ काम क्रिया, जिसको बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना, वास्तविक विकार। इन 8 में से कोई भी एक चीज किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान पर यदि होती है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। कोई कहां पर भी रहने दो, ये भाई बहुत अच्छा है, मधुबन का भाई, उसको क्या करना है, वो वहां रहता है, हम यहां रहते हैं, वो वहां बैठकर यहां की परिस्थिति वो क्या ठीक करेगा। कोई यहां का, वो क्या जान पाएंगे हमारा क्या जीवन है, हमारे जीवन में जो चल रहा है आंतरिक, कौन क्या समझ पाएगा। रात भर भी किसी के साथ बैठो और उसको सारी राम कहानी सुनाओ, मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, तो भी वो क्या कर पाएगा। कर्म भोग मेरे है, संकल्प मेरे है, गलतियां मेरी है, पाप मेरे हैं, विकर्म मेरे हैं, हिसाब किताब मेरा है, वो क्या करेगा। साथ साथ रो सकेगा, बस सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। क्या शिव बाबा का रिप्लेसमेंट है वो खुद ही दुखी और हलचल में है, हमें क्या संभालेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य के ये आठ, इनको गाठे कहा जाता है, एट टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य, इनका किसी भी परिस्थिति में ना हो। और जब ब्रह्मचर्य मजबूत होगा तब पवित्रता मजबूत होगी। परंतु हां, ब्रह्मचर्य एकमात्र पवित्रता नहीं है। पवित्रता में यदि 10 चीजें हैं तो एक ब्रह्मचर्य, परंतु ये जो एक है इसको यदि हटा लिया जाए और बाकी सारी पवित्रता की चीजें रखी जाए तो वो पवित्रता नहीं टिक सकती, क्योंकि पवित्रता यदि बिल्डिंग है उसका बेस ब्रह्मचर्य है। परंतु ब्रह्मचर्य केवल पवित्रता नहीं है, क्योंकि पवित्रता में तो हजारों दूसरी और चीजें हैं, संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, कृति, कल्पना, अवेयरनेस, दृष्टिकोण, पवित्रता की बहुत सारी दूसरी बातें हैं। ये तो हमने केवल चर्चा की अभी, काम विकार की, क्रोध की नहीं, लोभ की नहीं, मोह की नहीं, अहंकार की नहीं। पवित्रता में तो अहंकार का सूक्ष्म अंश भी ना हो वो पवित्रता है। परंतु संपूर्ण पवित्रता का एक आधार है और सबसे मुख्य आधार काम जीत, देखना ये देह क्या है और इस देह में क्या है, इसमें कोई सुख नहीं। और यदि हमें कोई सुख नहीं परंतु हम निमित्त बनते हैं किसी और को हमें फंसाने के, या किसी और की वृत्ति हमारी वजह से चंचल होती है, ये भी बोझ है। तो ऐसी ये आठ बातें सदैव ध्यान रखना, नोट करके रखना और बार बार रिवाइज करना। अच्छा, ओम शांति।